से बात करेंगे सभी, हमें एक से बहुत सुख प्राप्त करना है। बहुत सुख है ना बाबा में, सबको मालूम है, अनुभव है, चित शांत होते ही आत्मा कितने गहन सुखों में चली जाती है। बाबा पर एकाग्र होते ही उसके परम सुख आत्मा को तृप्त करने लगते हैं, सबको अनुभव है, इसको बढ़ाते चलेंगे। तो सभी आज ही अब क्लास के बाद, भोजन के बाद, अपनी अपनी डायरी में लिखेंगे इस समय पर फरिश्ते की ड्रेस पहनेंगे। सेवा में जा रहे हैं, भई ये ड्रेस उतारो, फरिश्ते की ड्रेस पहन के चलते हैं। घूमो, यहाँ सड़क है, फरिश्ता बनकर घूमना है, वाइब्रेशंस फैलाने हैं। तो कम से कम 10, उससे ज्यादा भी आप लिख सकते हैं, 25 बार भी चेंज कर सकते हैं। सभी अपना अपना आज प्लान बनाएंगे बाबा को बुलाने का और ड्रेस चेंज करने का, तो सुखद फीलिंग होने लगेंगी। और जब बाबा आएंगे हमारे सामने 24 तारीख को, तो हमें बहुत आनंद होगा। ओम शांति। सभी अब फिर से फरिश्ते की ड्रेस पहन लेंगे। मैं फरिश्ता कमल आसन पर हूं, और एक ही अभ्यास करेंगे, बाबा को बुलाएंगे, और बाबा ने अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया, उसके हाथ से ये रंग बिरंगी किरणें मेरे तन मन में फैलने लगी। बिल्कुल मगन हो जाएं।
ओम शांति। हमारे बीच में मीरा बहन जी हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। आप बाबा के अनन्य सर्विसेबल रत्न है, ऐसे विशेष आत्माओं को बाबा ने विदेश सेवा पर भेजा है। बेसिकली आप बेंगलोर से हैं, बेंगलोर में बहुत शुरू में आप, जब बाबा की सेवा शुरू हुई तो आप निकले, और साकार बाबा को भी आपने देखा है, दादी हृदय पुष्पा की भी पालना ली है, और वहां रहकर भी कुछ समय सेवा किया है। फिर आपको बाबा ने विदेश भेजा, ऑलमोस्ट पांचों ही खंडों में, अनेक देशों में आप सेवा के लिए भ्रमण करते हैं, और वैसे मलेशिया में आप रहते हैं, और वहां के जो अनेक सेवा केंद्र है उनको आप संभालते हैं। विदेश के भाई बहने जब बाबा से मिलने यहाँ आते हैं तो उनके कार्यक्रमों का प्लानिंग और संचालन भी आप करते हैं। बहुत अच्छे चिंतक हैं, मंथन बहुत अच्छा है। तो आज आप सबको भी ये मौका है उनका क्लास सुनने का, उड़ती कला का अनुभव कैसे हम करें और कैसे उड़ती कला में हम जा सकते हैं। मीरा बहन जी।
ओम शांति। जब भी हम मधुबन में आते हैं, हम सबको दो ही काम करना होता है, दूसरा काम तीसरा है ही नहीं, क्लास और ग्लास। क्लास करना है और क्लास के बाद ग्लास छाछ पीना है, पढ़ना है और शरीर का भोजन, आत्मा का भोजन, सिर्फ हजम करने की शक्ति चाहिए और कुछ नहीं। तो इसलिए जितना समय हम यहाँ पर रहते हैं मधुबन भूमि में, मधुबन माना सिर्फ पांडव भवन नहीं, मधुबन माना बाबा के पांचों धाम, जो भी भुजाई बाबा के हैं सब मधुबन ही है, क्योंकि बाबा ने ही बनाया है ना, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, सब मधुबन है। तो इसलिए जब भी हम यहाँ आते हैं तो हमारा लक्ष्य ही है पक्का स्टूडेंट होकर के रहना। हम माता है, भाई है, और कोई शरीर का संबंध हमको याद नहीं रहे तो हमारा पूरा अटेंशन पढ़ाई पर रहेगा। तो बाबा सिर्फ इस सीजन में नहीं परंतु रोज मुरली के अंदर समय की समीपता के बारे में इशारा देता ही रहता है। समय कम है और समय तेजी से जा रहा है, मंजिल बहुत दूर है, तो हमको समय के पहले, समय की समाप्ति के पहले मंजिल पर पहुंचना है तो क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ की गति कौन सा होना चाहिए जिसके आधार से हम समय के पहले नहीं, समय के साथ साथ हम मंजिल पर पहुंच जाए। और हम सब जानते हैं हमारी मंजिल कौन सी है, पुरुषार्थ की मंजिल कौन सा है, बाप समान बनना। बाप समान बनना माना कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना, निराकार और अव्यक्त बाप दादा के समान बनना, यही है ना मंजिल सबका। मंजिल सबका एक है या अलग अलग है? एक ही मंजिल है, राही हम सब अलग अलग हैं, रास्ता एक है और मंजिल भी एक ही है। तो अभी हम भले देरी से भी आए हो कि कभी भी बाबा के बच्चे बने हो, परंतु सभी मंजिल पर पहुंच सकते हैं, बाबा को उम्मीद है। तभी तो बाबा कहते हैं ना, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। जो देरी से आए हैं वो भी बहुत आगे जाकर के फर्स्ट नंबर ले सकते हैं, अगर समय के अनुसार, समय के गति के अनुसार पुरुषार्थ करे तो। इसलिए बाबा ने कह दिया कि अभी चलने का समय नहीं है। गुलजार दादी ने हंसी में उसी दिन एक बात कही थी। दादी ने किसी से पूछा, भाई आप कैसे हो? तो भाई ने बहुत अच्छी तरह से दादी को जवाब दिया, दादी बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। उसने सोचा कि हमने बहुत अच्छा जवाब दिया और हमारे जवाब से दादी बहुत खुश हो जाएंगे। तो दादी ने कहा, क्या कहा? दादी हम बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। चल रहे हैं? अरे भाई अभी चलने का समय गया, अभी तो उड़ना है। तभी उसकी आंख खुली, सच्ची बात है, अभी चलने का समय है कहाँ? अगर आप चलेंगे तो माया आपका पांव पकड़ेंगे, हाँ? कभी पांव पकड़ेगी, कभी नाक पकड़ेगी, कभी कान पकड़ेगी, पर उड़ेंगे तो माया को आप दिखाई नहीं देंगे, तो बिचारी वो आपको छोड़ देंगे। तो दादी ने कहा, भाई अभी चलना छोड़ो, अभी उड़ो, खुद भी उड़ो और दूसरों को उड़ाओ। तो आप सभी क्या समझते हो, हाँ? अभी आपकी पुरुषार्थ की स्पीड कौन सी है, हाँ? चार स्पीड होता है पुरुषार्थ का, हाँ? जब बच्चा पैदा होता है ना तो क्या करता है बच्चा, रेगड़ी पहनता है, थोड़े समय के बाद चलना सीखता है, फिर उसके बाद दौड़ता है, फिर कई बार जंप भी लगाता है। तो हमारा वो सब समय चला गया, चलने का टाइम, दौड़ने का टाइम, जंप लगाने का टाइम, अभी समय है उड़ने का। तो उड़ने का मतलब क्या होता है? बाबा ने तो कहा कि अभी है समय उड़ने का, तो उड़ने का मतलब क्या है? उड़ने का मतलब ही है अपनी स्थिति को श्रेष्ठ स्थिति बना के रखना, सदैव अपने श्रेष्ठ स्वमान धारी बनकर के श्रेष्ठ स्थिति में रह करके हर कर्म करना, हर बोल बोलना और हर कदम में हम चलते रहे उस स्थिति में, तो फिर ऑटोमेटिकली हमको उस श्रेष्ठ स्थिति में रह करके अगर हम नीचे देखते हैं तो सब बातें छोटी छोटी दिखाई देंगे। तो जैसे बाबा कहते ना, हाथी के नीचे चींटी क्या है, दब जाता है, तो ऐसे ही हमको भी लगेगा कि ये चींटी के समान एक सेकंड में खत्म हो जाएंगे। उड़ती कला का मतलब यही होता है कि सर्व आकर्षण से परे, कोई भी आकर्षण इस दुनिया की आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित न करे, चाहे अपना ही देह या देह के संबंधी दैहिक पदार्थ या अपना ही संस्कार, कोई भी प्रकार का आकर्षण नहीं, तब हम समझे उड़ती कला में हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी का स्वभाव, किसी का संस्कार हमारी स्थिति को नीचे ले आता है तो उसकी गलती नहीं है, हमारी स्थिति उड़ती कला में नहीं है। जैसे देखिए, आप एरोप्लेन में जब उड़ते हैं ना, जब बहुत ऊंची चली जाती है एरोप्लेन तो नीचे की कुछ चीज दिखाई नहीं देता है, सिर्फ बादल ही बादल, बस और कुछ नहीं दिखाई देता। तो ऐसे जब हम मूर्ति कला में चले जाते हैं तो हमको किसी की भी याद, किसी की भी आकर्षण, कोई के तरफ लगाव झुकाव कुछ भी नहीं, जैसे कि बुद्धि ऊपर ऊपर ही जाता रहता है, ऊपर वालों के तरफ, जैसे कि कहते हैं ना उपराम स्थिति। उड़ती कला माना ही ऊपर की स्थिति, उपराम स्थिति, ऊपर खींचता है, नीचे नहीं, अपना आकर्षण नीचे खत्म। पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, बुद्धि रूपी पांव शरीर रूपी पृथ्वी के आकर्षण से परे चले गई, उसको कहते उड़ती कला। क्योंकि बुद्धि का ही आकर्षण होता है ना, तो जब बुद्धि रूपी पांव इस शरीर रूपी पृथ्वी से ऊपर उठ गए तो समझो आपकी उड़ती कला है। अगर बार बार बुद्धि नीचे खींचती है ग्रेविटी, तो अंडरस्टूड अभी हम उड़ नहीं रहे हैं। नहीं, कई बार कोई पंछी होती है ना, उनको पंख भी है, उड़ना भी चाहते हैं परंतु उड़ नहीं सकते, क्योंकि अपने ही पांव से डाली को पकड़ करके बैठा है, पंख हिलाते भी है, उड़ नहीं सकते। ऐसे हम भी चाहते हैं उड़ती कला का अनुभव करें, पर बुद्धि रूपी पांव कहां ना कहां पकड़ा हुआ है, तो बेचारा उड़ नहीं सकता। और तीसरी परिभाषा ये भी है, उड़ती कला माना जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव। क्योंकि सत्युग में आप चले जाएंगे तो आपको पता भी नहीं रहेगा कि उड़ती कला है, तो अभी संगमयुगी जीवन में जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करना माना उड़ती कला का अनुभव करना। जीवन में रहते हुए सर्व बंधनों से, सब बातों से मुक्ति, उड़ती कला का बहुत सहज अर्थ हम ये भी कह सकते हैं, तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी का दूसरा अर्थ है उड़ती कला। माना पुरुषार्थी तो हम सभी है, समय अनुसार हमारा पुरुषार्थ कैसे होना चाहिए, तीव्र। तीव्र का मतलब है कि हम जो कुछ करते हैं वो निरंतर रहे, मन वचन कर्म खतनी करनी और रहनी समान हो जाए, वो है तीव्र पुरुषार्थी, वो ही उड़ती कला वाले। उड़ती कला का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना। फरिश्ते सदी उड़ते हैं ना, कभी फरिश्ते को आप धरती पर पांव रखा हुआ दिखाई नहीं, देखा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका है ही उड़ती कला। तो उड़ती कला का मतलब फरिश्ता बनना या फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना, माना सदीव अखंड महादानी की स्थिति। फरिश्ता क्या करता है? उड़ते हुए शुभ भावना, शुभ कामना की वाइब्रेशंस फैलाता है, मुख से कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ साइलेंस की भाषा में सर्व आत्मों को जो चाहिए वो देते रहते। सब उनको मानते हैं ये मेरा है। तो उड़ती कला का स्थिति का अनुभव करने का मतलब कि बेहद में रहना, हद की ताल तालियों को छोड़ देना, चाहे वो सोने की जंजीर हो चाहे लोहे की जंजीर हो। है तो जंजीर ना। अभी भी आप देखिए घर में कोई पंछी को रखते हैं ना, पर बेचारे पंछी को पिंजरे में बंद कर देते हैं, वो तो खुश नहीं है ना। तो पंछी का काम है उड़ना। अगर उसकी फ्रीडम को खत्म कर दिया, भले आप सोने की पिंजरा भी बना दो, पर पंछी अंदर खुश नहीं है। तो ऐसे अगर हम सोने की जंजीरों में भी फंसे हुए हैं या लोहे की, तो हमारी बुद्धि हद में चली गई तो हम उड़ती कला में नहीं। उड़ती कला वाले बेहद बुद्धि वाले। और जो बेहद में रहते हैं ना, उसकी निशानी क्या है कि वो सब उन आत्माओं को अपना समझते हैं। जैसे दादी थी ना, दादी प्रकाशमणि, दादी तो सदी बेहद में रहती थी। जो भी दादी से मिलते थे उनको अपनापन की भासना आती थी, मेरी दादी। सब मुख से कहते थे ये मेरी दादी है, मेरापन, अपनापन, क्योंकि बेहद में बुद्धि। और दादी को भी ये फीलिंग आती थी ये सब मेरी है। तो जब ऐसे अनुभव हो तब कहे हम उड़ती कला में हैं। तो सबसे पहले तो हम उड़ती कला कहां किसको जाता है वो समझे। नहीं तो कोई समझते हैं उड़ती कला माना शरीर जैसे योग में बैठो ना, तो फिर शरीर जैसे धरती से ऊपर ऊपर जा रहा है, तो समझते कि आज हमने उड़ती कला का अनुभव किया। वो कोई उड़ती कला नहीं है। उड़ती कला जीवन में होना चाहिए, योग में नहीं। योग में भी उड़ती कला का अनुभव उसको नहीं कहेंगे जो शरीर धरती से शरीर ऊपर उड़ जाए। नहीं, वो जब हमारी बुद्धि योग एकदम बाबा से लग जाए, बीच में ना कोई आत्मा ना कोई व्यक्ति का आकर्षण रहे, तभी हम कहेंगे ना हमारी बुद्धि पावरफुल अनुभव किया योग में। तो अभी ऐसी उड़ती कला का अनुभव करने के लिए हम क्या विधि अपनाएं? हम आपको 7 बातें सुनाएंगे, तो आपको जो पसंद आए वो आप यूज करना। अगर सब पसंद आए तो सब विधि यूज करें। नहीं, कई बार कई बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन दे देते हैं, ये ले ना, ये काम नहीं करता है तो दूसरा, कुछ तो काम करेगा। वैरायटी तो रखना पड़ेगा ना अपने पास। तो सबसे पहली विधि बहुत सहज, और ये विधि बाबा ने सारी सीजन की मुरली में हम सब ब्राह्मणों को बार बार याद दिलाया है, वो कौन सी बात है कि हल्के रहना, डबल लाइट बनना, उड़ने के लिए हल्कापन चाहिए। अगर कोई भी प्रकार का भारीपन है, उड़ना तो छोड़ो, चल भी नहीं सकते। अभी देखो किसी का ओवरवेट होता है, बेचारे को चलने में कितना तकलीफ, चलना तो छोड़ो खड़ा भी नहीं हो सकते बेचारे। तो अगर हम उड़ती कला में जाना चाहते हैं तो हमको भी बुद्धि का वेट लूज करना है। आजकल फैशन हो गया ना वेट लूज करने का। हाँ, तो हम ब्राह्मणों के परिवार में भी अगर उड़ती कला वाले बनना है तो बुद्धि में जो बोझ है ना उसको उतारना है, वेट कम करना है। कैसे करेंगे? तो उसके लिए बाबा ने ऑफर किया है, मैं आपका ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, बोझ मुझे दे दो, जो कुछ बोझ है मुझे दे दो, आप हल्के हो जाओ। तो आप सभी ने दे दी है बोझ, बाबा को दिया है, हाँ? परंतु एक हाथ से दे के दूसरे हाथ से ले लेते हैं, हाँ? तो फिर कंप्लेन करते रहते हैं कि हमको इसकी चिंता है, उसकी चिंता है। चिंता किसका? आपने बोझ दे दिया ना, तो उसकी चिंता है ना, हाँ? तो सबसे पहले ये विधि अगर अभी तक आपने नहीं अपनाया हो तो बाबा आने के पहले बाबा को बोझ दे दो, मेरा कुछ नहीं, बाबा आपका है सब कुछ, मैं ही बच्चा हूं। तो बच्चे के ऊपर कोई बोझ नहीं होता है। देखो बच्चे इसलिए हल्के फुल्के होके खुशी से नाचते हैं, इतने हल्के रहते हैं ना। तो हमको भी डबल लाइट बनना है। डबल लाइट का मतलब कि स्मृति में भी लाइट स्वरूप अभ्यास करना है। मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं मानव हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं गुजराती हूँ, ये नहीं, इसमें भारीपन आ जाता है। स्मृति में भी हल्कापन, लाइट स्वरूप, और वजन में भी लाइट। अभी आप देखो लाइट को कभी वजन किया जाता है क्या? लाइट का कोई वजन होता है क्या? अगर वजन है तो ये शरीर का है। तो डबल लाइट का कई अर्थ है। एक अर्थ तो हम ये कहेंगे कि रूप में भी लाइट और वजन में भी हल्कापन, और दूसरा डबल लाइट का मतलब कि मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप और मैं प्रकाशमय काया के अंदर फरिश्ता हूँ। तो जैसे ही मैं अपने आप को वो प्रकाश मैं कार्ब के अंदर देखती हूँ, ये प्रकृति पांच तत्व से बना हुआ कार्ब को छोड़ करके मैं अपने को हल्का होकर के उड़ती हुई अपने को महसूस करेंगे, क्योंकि लाइट का कोई वजन नहीं होता। और तीसरा अर्थ क्या है डबल लाइट का? कि मैं आत्मा लाइट और परंदा में बाबा लाइट के साथ, परम ज्योति के साथ, मैं भी प्रकाश स्वरूप, मेरा बाप भी प्रकाश स्वरूप। तो इस प्रकार से डबल लाइट रहने का जब हम अनुभूति करेंगे सारे दिन में, तो हम उड़ती कला में चली जाएंगे, देरी नहीं लगेगा। ये करेंगे ना? अभी भी देख लो, अगर कोई भी बोझ है, मेरा पन, बोझ कहाँ से आता है? मैं और मेरा, हाँ? मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी डिपार्टमेंट है, मेरी सेवा है, तो बोझ लगता है। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर लिया तो हल्के हो जाएंगे। बाबा ने क्या कहा? बेफिकर बादशाह, केयरफुल रहना है, केयरलेस नहीं, केयरफुल भी रहना है पर केयरलेस भी नहीं बनना है, तभी हम डबल लाइट रह सकते। जो काम करते हैं वो जिम्मेवारी से करना है, पर बोझ महसूस नहीं हो तभी हम डबल नाइट रहेंगे। तो सबसे पहली विधि उड़ने के लिए डबल लाइट स्थिति का अनुभव, और दूसरी विधि बाबा ने अभी कुछ दिन पहले वरदान में बताया था, डबल इंटॉक्सिकेशन चाहिए। जैसे एरोप्लेन में भी ऑर्डिनरी पेट्रोल नहीं डालते, कार में जो पेट्रोल डालते हैं ना वो डालते नहीं एरोप्लेन में, रिफाइंड पेट्रोल, उसको कहते डबल रिफाइंड पेट्रोल, तभी तो वो एरोप्लेन हवा में उड़ के हवा में इतना समय रह सकता। तो ऐसे अगर हमको उड़ती कला में सूक्ष्म वतन में जाना है, परंधाम में जाना है, और जितना समय उस स्थिति को हम पकड़ के रखना चाहते हैं, तो हमको भी डबल इंटॉक्सिकेशन चाहिए, एक साकारी नशा और दूसरा निराकारी नशा। इसलिए बाबा कहते ना, अपने घोट तो नशा चढ़े, जब तक नशा नहीं है तब तक वो शक्ति इकट्ठा नहीं होता, तो टेक ऑफ ऊपर उड़ नहीं सकते। तो निराकारी नशा कौन सी, मैं किसकी संतान हूं, मेरा बाप कौन है, यू नो, साधारण रूप में कभी हम सोच लेते बाबा है हमारा बाप, नहीं, कभी ये भी सोचना है कि हम ईश्वरीय संतान हूं, ईश्वर की संतान हूं। निराकारी नशा, और फिर साकारी नशा कि हम आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली, ये दोनों नशा कम नहीं है, क्योंकि हम आदि रचना कल्प वृक्ष के तना बन करके पूर्वज के रूप में सारे कल्प वृक्ष की पालना करते हैं। तो आप सोचिए आपको कितना नशा होना चाहिए, पूर्वज ही पूज्य बनते, तो हम पूर्वज भी है और पूज्य भी है, हम आदि पिता के संतान मुख वंशावली, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली। तो ये जब डबल इंटॉक्सिकेशन हमारी बुद्धि में होता है, तो ऑटोमेटिकली बुद्धि में वो एनर्जी रिसाइकल होने के कारण दुनिया के कोई भी आकर्षण हमको आकर्षित नहीं कर सकता, ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि उठ जाती है। तो हम यहां रहते हुए भी, देखते हुए भी देखते नहीं, सुनते हुए भी सुनते नहीं, क्योंकि जिस बात की स्मृति है उसका स्वरूप बन करके हम चलेंगे। इसलिए जो उड़ती कला वाले हैं उनके लिए समस्या नहीं समाधान नजर आता है, समस्या को समाधान स्वरूप में बदली करने के लिए उड़ती कला जरूरी है, क्योंकि वही बात अगर हम नीचे बैठ करके देखेंगे तो बड़ा दिखाई देगा, जब हम ऊपर उड़ जाते हैं तो फिर नीचे देखते हैं तो वही बात छोटी सी दिखाई देता। तो इसके लिए हमको उड़ती कला में जाने के लिए सदैव नशा, मैं किसकी संतान हूं, ईश्वरीय संतान हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, पूज्य आत्मा हूं, आदि पिता के मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा हूं, ये स्मृति स्वरूप बन करके हर कर्म करें। और तीसरी बात विशेष, मैंने बताया ना उड़ती कला का मतलब है तीव्र पुरुषार्थी, फास्ट एफर्ट मेकर, बाबा ने कहा था डबल एफर्ट मेकर। तो उसके लिए हमको क्या करना है, बहुत सहज विधि है, फास्ट करना है। फास्ट का मतलब उपवास, क्योंकि मैंने बताया ना हमारा थोड़ा वेट बढ़ गया है सबका, बुद्धि का भारीपन ज्यादा हो गया है ना, तो अभी कुछ डाइटिंग करनी पड़ेगी उड़ती कला में जाने के लिए, हल्कापन चाहिए। तो कौन सी फास्टिंग करेंगे ताकि हमारी उड़ती कला सदैव रहे? तीन प्रकार का फास्टिंग चाहिए, एक मन के लिए, एक बुद्धि के लिए और एक दिल के लिए, क्योंकि आत्मा के अंदर ही ये तीनों चीज है ना, मन बुद्धि और दिल। तो अगर हम ये तीनों प्रकार की फास्टिंग आज से चालू कर दे तो हम बहुत फास्ट चले जाएंगे और फर्स्ट नंबर ले लेंगे। तो आप में से कौन कौन करेगा ये फास्टिंग? सब भारतवासी तो बहुत होशियार है फास्टिंग करने में। देखो, कोई भी देवता को प्रसन्न करना है, कोई भी काम कराना है देवताओं से, इष्ट देवताओं से, हाँ, कहते कि ये काम मेरे को कर दो, मैं इतना दिन उपवास करूंगी, और करते हैं तो उनकी भावना वो इष्ट देव इष्ट देवी पूरी कर देती है। तो क्यों नहीं हम अपने लिए ही पुरुषार्थ में फास्टिंग अपने आप से करें? तो मन के लिए कौन सी फास्टिंग चाहिए? उपवास, व्यर्थ संकल्पों का फास्टिंग, क्योंकि मन में ही तो संकल्प आता है ना। तो मन में व्यर्थ संकल्प ना हो, हम आने नहीं देंगे। जैसे कोई निर्जल व्रत रखते हैं ना, पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, भले उनको चक्कर भी आता रहेगा ना, पर पानी को हाथ नहीं लगाएंगे, कहेंगे कि हमारा व्रत भंग हो जाएगा। तो हम भी ऐसा व्रत ले ले वे, बस आज से लेकर हम व्यर्थ को टच नहीं करेंगे। हा? क्योंकि मैं बताऊं ना, व्यर्थ को क्या समझना चाहिए, जैसे कि बुद्धि को नॉन वेजिटेरियन फूड आपने खिला दिया। अभी देखो, हम कोई नॉन वेजिटेरियन फूड देखते हैं ना बाहर, अपने को कैसा लगता है, जैसे कि ये हमारे लिए नहीं है, हमको नहीं देखना भी नहीं है, टच तो नहीं है पर देखने के लिए भी दिल नहीं होती, हम वहां जाते भी नहीं है उस तरफ ने। तो ऐसे हमारे अंदर वैराग्य चाहिए, व्यर्थ माना नॉन वेजिटेरियन फूड, तो हमको टच भी क्या, देखना भी नहीं है, उसका छूना भी नहीं है। तो मन इतना शुद्ध हो, हल्का हो। और बुद्धि के लिए कौन सी फास्टिंग? बुद्धि में आता है अभिमान। बाबा ने भी अभी भी मुरली में बताया ना, लक्ष्य और लक्षण को दूर करने वाला कौन सी एक ही बात है, देहाभिमान। तो इसलिए बुद्धि की फास्टिंग चाहिए नम्रता की। नम्रता बुद्धि में आ जाए, अभिमान का फास्टिंग, हम अभिमान आने नहीं देंगे, तो बुद्धि हल्की हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, मेरापन मैंपन खत्म हो जाएगा। और तीसरा, दिल के लिए कौन सी फास्टिंग चाहिए? किसी किसी की दिल है ना बहुत भारी रहती। मैं बताऊं, इस दुनिया के अंदर चार प्रकार की दिल है लोगों में, ब्राह्मणों में भी है। किसी के दिल है ना टूटा हुआ है, ब्रोकन हार्ट। किसी के दिल है ना भारी है, हेवी हार्ट। तीसरा, किसी के दिल है ना बंद दिल, क्लोज्ड हार्ट, ओपन नहीं है। जैसे किसी को आर्टरी बंद हो जाता है तो खून आना जाना बंद हो जाता है ना। और चौथा है ओपन हार्ट, थोड़ों का है। आप अपने आप से पूछ लीजिए आपकी हार्ट कैसी है, ओपन हार्ट है, क्लोज हार्ट है, ब्रोकन हार्ट है, और हेवी हार्ट है या एम्प्टी हार्ट है। किसी की दिल तो खाली खाली, वो वेट करते रहते कोई हमारे दिल में आ जावे, खाली पड़ा है। तो कौन सी फास्टिंग करें? क्यों दिल भारी होती है, कैसे हम फंस जा सकते अगर दिल भारी है तो? उसके लिए क्षमा, फॉरगिव एंड फॉरगेट, बदला लेने की भावना नहीं। कोई भी कुछ भी किया हो वो उसकी उसका कर्म। दादी जानकी ने बहुत अच्छा पॉइंट सुनाया। दादी ने कहा कि कोई भी कोई गलती किया है, भले आपको दुख भी दिया है, आपको अन्याय किया है, आपके जीवन को नुकसान पहुंचाया है, पर आप उस आत्मा और भगवान के बीच में इंटरफियर नहीं करो, क्योंकि उसने कर्म किया है और भगवान उसकी रिटर्न देने वाला है, तो वो जाने और भगवान जाने। तो दादी ने कहा कि तुम बीच में नहीं जाओ। तो अगर हम बीच में क्यों किया, कैसा किया, हम बीच में जाते हैं तो हमारी दिल भारी हो जाती। तो हमारा काम है क्षमा करना। तो ये अगर हम उपवास करते हैं, किसी की भी बात हम दिल में नहीं रख करके एकदम हल्का सबको माफ कर देना, सबको क्षमा करना। बाबा ने यही सिखाया ना, क्षमा ही शिक्षा है। किसी को बैठ करके शिक्षा देने की भी जरूरत नहीं। तो अगर आप तीन प्रकार के फास्ट करेंगे आज से लेकर, आपके अंदर इतना हल्कापन आ जाएगा तो आप एकदम फास्ट जा सकते। उड़ती कला में ऐसे उड़ेंगे जो पहले 70 साल से भी जो आए हुए हैं ना, उससे भी आगे चले जाएंगे। उड़ती कला में जाने के लिए कोई वर्ष की कोई गिनती नहीं है, ये तो बुद्धि की बात है। तो तीसरी विधि याद आई, फास्टिंग। अभी चौथी विधि क्या है कि देखिए, जब भी हम ट्रैवल करते हैं ना, तो कभी भी कहां जाना होता है तो क्यों हाईवे में जाते हैं, क्यों नहीं अंदर अंदर गलियों में जाते? क्योंकि हाईवे फास्ट जाता है, ट्रैफिक लाइट नहीं है, कोई टर्निंग नहीं है, सीधा रास्ता है। तो ऐसे ही उड़ती कला में जाने के लिए ब्राह्मणों की हाईवे पकड़ना है। तो कौन सा है ब्राह्मणों की हाईवे, जहां पर नो स्टॉपिंग, नो टर्निंग, स्ट्रेट लाइन, फॉलो फादर, फॉलो मदर, बस इतना ही करना है। हमको कोई नई बात रचनी नहीं है, नई बात सोचनी नहीं है, पर बाबा ने जो किया, बाबा के कदम के पीछे हम कदम रखना है। अगर बाबा ने जो कर्म किया उससे उन्होंने उड़ती कला का अनुभव किया, तो हम भी वही कदम रखेंगे तो हम भी उड़ेंगे। इतना सहज है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ करके गलियों में जाते हैं, गलियों में जाके 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 थक के फिर हाईवे में आते। अभी तो इतना समय तो है नहीं, समय तो जा रहा है। हाँ? बाबा कहते ना कि समय रुकेगा नहीं, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नो मैन। तो इसलिए हमको भाई बहनों को फॉलो नहीं करना है। भाई बहनों को फॉलो करना माना गलियों में जाना। आज किसी ने आपको ज्ञान दिया, वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगा, उसका गुण दिखाई दिया, कुछ दिन के बाद उसके समीप आते 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 उसका अवगुण देखना चालू कर दिया, तो फिर उस आत्मा के साथ आपको प्यार कम हो गया, तो रुकावट आ गई ना। तो हम सब पुरुषार्थी है, कोई ना कोई में कुछ ना कुछ अवगुण तो है ही। तो इसके लिए फॉलो भाई बहनों को नहीं करना है, फादर मदर। तो अगर फॉलो मदर फादर है तो उनको हम रोल मॉडल बनावे अपने जीवन के लिए। हर कर्म करने के पहले बाबा होते तो क्या करता, हर बोल बोलने के पहले बाबा अगर इसी परिस्थिति में होता तो क्या बोलता, सोचने के पहले भी अगर बाबा होते तो इस परिस्थिति में क्या सोचते। तो अगर इस प्रकार से तो हम तीन शब्द इंग्लिश में यूज करते हैं, वॉच, फॉलो फादर मदर करने के लिए तीन शब्द याद रखना है, वॉच, फिर मैच, फिर कैच। पहले वॉच करना है कि हमारा बाबा जैसे, फिर मैच करना है, फिर कैच करके आगे बढ़ना है। तो ऐसे अगर हाईवे में जाते रहेंगे तो कभी आपको पीछे देखना भी नहीं पड़ेगा और मंजिल पर आप जैसे बाबा पहुंच गए हम भी पहुंच जाएंगे। तभी बाबा ने कहा ना कि जब बाबा वापस घर जाएगा, बाबा तो उड़ेगा, अगर हम उड़ती कला में नहीं है तो हम उनके साथ उड़ नहीं सकते, हम पीछे रह जाएंगे, साथी बन करके नहीं जा सकेंगे, बाराती में आ जाएंगे। तो हम सबका लक्ष्य क्या है, साथी होकर के जाना है या बाराती? ठीक है, हाँ, बाराती में जाने वाले लुटक लुटक के चलेंगे, चलो भाई चलना ही पड़ता है, अभी बाबा के बच्चे बन गए, पीछे भी नहीं जा सकते हैं, चलो लंगड़ा के चलते रहेंगे, हाँ? ऐसा नहीं, हाँ? अगर साथी बन करके चलना है तो साथी जैसे उड़ती कला में है हमको भी वही स्पीड पकड़ना है, फॉलो फादर मदर। तो हमारा रोल मॉडल बाबा, ये चौथी बात है। और पांचवी बात कौन सी, हम सदी उड़ते रहे। अभी भी गीत में भी सुना ना, हमको दो पंख चाहिए, उमंग और उत्साह, पंख के बिना तो उड़ ही नहीं सकते, हा? तो उमंग और उत्साह, तभी तो बाबा कई बार जब पर्सनल मिलते तो बाबा कहते ना, उमंग उत्साह के पंखों को लेकर के उड़ते जाओ। माना अगर जीवन में उमंग उत्साह है तो ब्राह्मण जीवन है, अगर ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह नहीं है तो ब्राह्मण होते हुए मरे हो के बराबर। तो उमंग उत्साह कहाँ से आएगा, उमंग है तो उत्साह, अगर उमंग नहीं है तो उत्साह नहीं। तो उत्साह सदा बना के रखने के लिए बाबा कहते हैं ना कि ब्राह्मण जीवन को उत्सव के रूप में मनाओ। व्हाट इज ब्राह्मण लाइफ, उत्सव है। जैसे अभी दीपावली आती है, उत्सव, तो कितना उत्साह होता है हर एक के मन में, हम ये करेंगे, नई चीज लेके आएंगे, नया कर्टन लगाएंगे, नया कपड़ा बनवाएंगे, उमंग उत्साह होता है ना, उत्सव है। तो हमारा ब्राह्मण जीवन हर दिन उत्सव है। उत्सव में क्या क्या करते हैं, गाते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, मिलते हैं आपस में, हमारा तो है ही जीवन। और दूसरा, उत्साह सदा बना के रखने के लिए हमको और एक चीज जरूरी करनी है, जीवन में नवीनता। अभी हम कई ब्राह्मणों से सुनते हैं ना, बहन जी जब पहले वर्ष हम ज्ञान में आए ना, बहुत उमंग उत्साह था, हमको कोई पूछते थे ना, आप कैसे हो भाई, ओए हम तो उड़ रहे हैं, हमको धरनी पर ही नहीं है हम। दूसरे साल पूछो ना वही व्यक्ति से, कैसे हो भाई, ठीक है चल रहे हैं। और तीसरी साल पूछो तो कहते चलना ही पड़ता है, अभी क्या करे। वैसे देखा जाए तो हर साल बढ़ना चाहिए ना, पर कम क्यों हुआ, क्योंकि हमने नवीनता जीवन में नहीं लाई। पहला वर्ष आए तो सब कुछ नया नया ना, जब से तुम मिले हम, नए दिन लगे, नए रात लगे, ज्ञान नया, परिवार नया, सब कुछ नई नई बातें हैं। फिर उसके बाद पुराना हो जाता है, फिर उसमें से हमको नवीनता लानी है। अभी भी आप देखिए, आपको एक रेसिपी मिल जाता है खाना बनाने का, नई नई रेसिपी कोई आपकी फ्रेंड दे देंगे तो आपको कितना अंदर में उमंग उत्साह रहता है, मैं घर में जाकर के मैं ट्राई करूंगी। तो वो जब बनाते हैं ना, तो भले आपने कितनी बारी बनाया होगा, परंतु वो नई प्रकार से उसने दिया है ना रेसिपी, उसको बनाने में इतना उमंग उत्साह, और बना करके सबको खिलाना, टेस्ट कराना, क्यों, नई चीज है। तो जब तक हम नवीनता नहीं लाए हैं, तब तक हमारा पंख काम नहीं करेगा। पंख है इसलिए बाबा कहते ना, उत्साह हमको अपने आप से जागृत करना है। कोई हमको महिमा करे, हमको उत्साह आ जावे, और नहीं करे तो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। आजकल हम ऐसे चलते हैं, किसी ने हमारी सेवा की सराहना की तो हमको उत्साह मिल गया, उड़ने लगे, और किसी ने हमारी इंसल्ट की तो हमारा पंख टूट गए, ऐसा नहीं। तो जब तक हमारा उमंग उत्साह का पंख पक्का नहीं है, तो हम सदैव उड़ नहीं सकते, कभी उड़ते हैं कभी नीचे आते हैं। तो ऐसे समटाइम कभी कभी वाले कहां जाएंगे, त्रेता में जाएंगे। बाबा ने बता दिया ना, जो भी पुरुषार्थ करो अगर सदा करते हैं तो सत्युगी आत्मा है, कभी कभी करते हैं तो त्रेतायुगी आत्मा। तो हम कौन सी लिस्ट में है, हा? बाबा पूछते ना, आप सभी खुश हो, हम सभी कहते हाँ बाबा हम सब खुश है, सब संतुष्ट हो, हम क्या कहते, हाँ। फिर दूसरा प्रश्न पूछता है बाबा, सदा संतुष्ट हो, आधे की हाथ नीचे आ जाती है, क्यों नहीं सदा संतुष्ट, पूछना चाहिए ना अपने आप से। जबकि बाबा ने हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा ही हमको दे दिया है, तो हम क्यों नहीं संतुष्ट रहते, क्यों नहीं खुश रहते, क्योंकि हम अपने को कम देखते हैं, दूसरों को ज्यादा देखना लग चालू कर देते, इसलिए हमारा उमंग उत्साह के पंख टूट जाते। मैंने अनुभव से देखा है, जब पहला बार आते हैं ना ज्ञान में, अपने ऊपर बहुत अटेंशन रहता है, बस हम देरी से आए हैं ज्ञान में, हमको बहुत पुरुषार्थ करना है, आगे बढ़ना है सब कुछ। फिर धीरे धीरे जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं ना, इधर उधर देखना चालू कर देते हैं कि ये कैसा चलता है, वो कैसा चलता है, तो हमारी स्पीड ढीला हो जाता है। तो इसलिए बचपन के दिन भुला न देना, वो दिन भूलना नहीं जब हम बाबा के ज्ञान में आए, तो कैसे हमको उमंग उत्साह था, कैसे पुरुषार्थ की लगन थी, बस बस हमको अभी अभी कर्मातीत बन जाना है, अभी हमको बाबा को प्रूफ देना है, तो वो ही हमको भी बना रहे। ये छठी बात है, तो उमंग उत्साह के पंख टूटे नहीं, उसकी संभाल करनी। वो टूटता तब है जब बोरिंग हो जाते, बोर्डम, अरे रोज अमृत वेले उठना है, रोज मुरली सुनना है, चलो एक हफ्ते में एक बारी बस, इनफ ना, हाँ? तो ये जब भी बोर्डम होता है ना, बोरिंग लगता है किसी को, तो उमंग उत्साह के पंख टूटा। परंतु उसमें भी नवीनता लाते रहेंगे तो कभी बोरिंग नहीं होगा। हम जो दादियों को देखते हैं ना, अभी जो मुरली सुनते हैं बाबा की, ये पांचवा वारी रिवाइज हो रहा है, और दादियां जब मुरली सुनती है तो ऐसे सुनते आज ही सुन रहे हैं, और हम सुने भी नहीं पहले, ऐसा लगता है बाबा रोज रोज वही कहता है, अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, ये तो हमको पता है ना, बाबा दूसरी बात बोलो ना। तो हमको बोरिंग लगता है बार बार वही सुनना, परंतु ये नहीं समझते हैं कि बाबा क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो पाठ हमने पक्का नहीं किया जीवन में, उनको हमारे साथ कितना धीर्यता है, पेशेंस है, जब तक हमने पक्का नहीं किया है छोड़ता नहीं है, वो नहीं देखते, तो इसलिए बोरिंग हो जाते। तो बोर्डम आने नहीं देना, वो सबसे बड़ा शत्रु है। फिर पहले बोर्डम आता है, फिर थोड़ी सी बहाना बताएंगे, फिर थोड़ी सी थकावट होंगी, फिर सुस्ती आएंगे, बस फिर तो माया का दरवाजा खुल जाएगा। अभी सातवां एक बात सुना देते हैं, तो वो है उड़ती कला में जाने के लिए प्लेन इंटेलेक्ट चाहिए, प्लेन बुद्धि। जब हमारी बुद्धि प्लेन होंगी ना, तो एरोप्लेन के मार्फिक हम उड़ेंगे। ऐसा बुद्धि की कमाल है, बुद्धि की कमाल है। तो अगर हमारी बुद्धि प्लेन नहीं है, प्लेन का मतलब कि एक बाप दूसरा न कोई, अव्यभिचारी प्यार, अव्यभिचारी याद। अगर एक भी व्यक्ति, एक भी वस्तु, एक भी स्थान बुद्धि को आकर्षण करता है, तो हमारी बुद्धि व्यभिचारी हो गई, तो वो उड़ नहीं सकते, नीचे नीचे ही आएंगे। तो इसलिए हम कहते ब्राह्मण जीवन में उड़ती कला में जाने के लिए अपनी बुद्धि की बहुत संभाल करनी है। बुद्धि हम ब्राह्मण जीवन की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। जैसे किसी के पास हीरा चांदी सोना होता है ना, उसको बड़ा प्रॉपर्टी समझ के संभाल के रखते हैं, तो उससे भी बढ़िया है हमारी बुद्धि। तो अगर हमने अपनी बुद्धि को प्लेन रखी, तो हम सदैव बाबा के साथ बुद्धि, बुद्धिवानों की बुद्धि के साथ हम बुद्धि जोड़ सकते हैं, और उससे हम शक्ति लेकर के डबल पावर से हम ऊपर उड़ेंगे। तो इसके लिए अभी हमको इधर उधर नहीं देखना है। जैसे घोड़े का दौड़ होता है ना, हॉर्स रेस, घोड़े को क्या करते हैं, कपड़ा बांधते हैं आंखों में। क्यों बांधते हैं? क्योंकि जब घोड़े दौड़ते हैं ना, उनका अटेंशन दूसरे घोड़ों तरफ ना जाए, उनकी जो दौड़ है वो थोड़ा धीमे हो जाएंगे। तो हमको भी ये अटेंशन रखना है कि हम दौड़ते हुए सीधा निशाने तरफ हमारा अटेंशन रहे, इधर उधर हमको नहीं देखना है। तो फिर हमको गारंटी है हम समय के पहले मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो इसके लिए अभी बाबा ने कहा ना कि बाबा को घर जाने में देरी नहीं लगेगा। बाबा तो ज्योति बिंदु है, निराकार, एक सेकंड में उड़ जाएंगे। बाबा भी देखो गुलजार दादी के तन में कितने में आते और कितने में चले जाते, तो जाने आने में देरी नहीं लगता। तो हमको भी इस शरीर में रोज अमृत वेले उठते हैं ना, ये बहुत सहज विधि है, अमृत वेले उठते हैं। तो ऐसा हमको संकल्प करना है कि आज मैं आत्मा परंधाम से अवतरित हो रही हूँ इस शरीर के अंदर, मैं अवतरित आत्मा हूं, मैं ऊपर से ईश्वरीय कार्य के लिए अवतरण हुआ है मेरा। बस कार्य किया फिर हम ऊपर चले गए, क्योंकि अवतरित आत्माओं का एक ही काम होता है, भगवान का संदेश देना। अवतरित आत्माओं का किसी के साथ हिसाब किताब नहीं होता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। तो हम भी रोज ये स्मृति रखें कि हम अवतरित आत्मा हूं, अवतरण लिया है आज ईश्वरीय संदेश देने के लिए। तो हमने दिया, कार्य किया, हम ऊपर चले गए। तो ये अभ्यास हमको ज्यादा चाहिए। रहना है हमको सूक्ष्म वतन में, वहां से हमको आना है फिर चले जाना है। हमारी परमानेंट रेसिडेंट सूक्ष्म वतन होना चाहिए। अभी क्या होता है, हम मृत्युलोक निवासी ज्यादा समय रहते हैं और फिर ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बाबा कई बार कहते हैं ना कि अगर बाबा के साथ आपका प्यार हो, तो जैसे बाबा साकार शरीर का तन का आधार लेकर के अव्यक्त में हमारे से मिलन मनाते हैं, ऐसे हम भी इस साकार शरीर से दूर होकर अव्यक्त बाबा से सदैव मिलन मनाते रहे। तो इसके लिए जैसे बाबा ने कहा कि देह अभिमान छोड़ना है। जब तक देह का अभिमान है तो हम इस पांच तत्वों की बने हुए प्रकृति से हम परे नहीं जा सकते। तो पांच तत्व बार बार हमको खींचेगा आकर्षण पृथ्वी का, तो हम मूर्ति कला का अनुभव नहीं कर सकते। तो अभी इस बारी आप सब वापस जाएंगे तो सबको ऐसा लगना चाहिए कि फरिश्ता यहाँ प्रकट हो गए हैं, ऊपर से आते हैं, काम करके चले जाते हैं, तो रहते नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे सब हम सब फरिश्ते फरिश्ते सबको नजर आएंगे तो फिर वो एक कलम लग जाएगा उड़ती कला का, तो नीचे बातें सब समाप्त हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो इसके लिए बाबा आने के पहले, कल बाप दादा आने के पहले इन सातों बातों में से कोई भी बात की कमी अगर हम अपने आप में देखते हैं तो वो हम भर ले। अपने आप को चेक करके देखें कि क्या सचमुच हम डबल लाइट हैं, हमारे अंदर डबल इंटॉक्सिकेशन है, हम एकदम फास्टिंग में हैं, क्या हम फॉलो फादर करते हैं, क्या हम सदैव उमंग उत्साह का पंख हमारा मजबूत है, हमारी बुद्धि प्लेन है या नहीं। तो अगर कुछ भी थोड़ी मुझ कमी है तो आप भर लीजिए। तो आप सभी को बहुत भाग्य है, ज्ञान सरोवर में रहने को मिला है, तो यहाँ का वातावरण इतना अच्छा है, शांति, और इतना गर्मी भी नहीं है, शांति में, ठंडक में। यहाँ चार बाबा का कमरा है, आपको पता ही नहीं है या मालूम नहीं, एक तपस्या, यह बाबा की कुटिया भी है ना, बाबा की कुटिया रॉक गार्डन के ऊपर, बहुत सुंदर, और बाबा का डोम है, और बाबा का कमरा, और राज ऋषि भवन में भी। तो जहां चाहे बाबा के कमरे में, गार्डन में, एकांत में बैठ करके, गहराई में जाके कुछ भी कमी है तो छोड़ के उड़ने लग जाए। कोई भी टाल टाली हमको आकर्षण न करे। तो ऐसे जब उड़ती कला में चले जाएंगे तो हमको मंजिल समीप दिखाई देगा, तो कभी हम दिल शिकस्त नहीं होंगे, तो हम फिर बाबा के दिल तख्त नशीन बन करके बाबा के साथ हम सब घर जाएंगे। तो ऐसे हम अभी 24 आवर्स में पुरुषार्थ करें और अपनी उन्नति कर लें, क्योंकि रियलाइजेशन से क्या नहीं हो सकता। जब तक रियलाइजेशन नहीं तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप अपनी चलने की गति को छोड़ करके अभी गियर चेंज कर लीजिए, उड़ने की स्पीड। तो माया को आप दिखाई ना दे तो माया से आपको वार ही नहीं करना पड़े। माया आवे फिर उससे वार करे, उसको भगावे, टाइम नहीं है। तो इसके लिए